त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेश्वरी भगवंतों को नमस्कार। वृषभ देव तीर्थंकर को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर स्वामी पर्यंत 24 धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम। द्वादशांग शुद्ध देवता स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भाव पूर्ण वंदन। ज्ञानी ध्यानी तपस्वी पूर्व शताब्दी के धर्म धरेन्द्र आचार्य चरित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय शांति सागर महाराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। जो प्रति अभी हमारे सामने है जिसमें से हम पूज्यपाद आचार्य विरचित नंदीश्वर भक्ति में नंदीश्वर द्वीप के विवरण के उपरांत तीर्थंकर के गुणों का वर्णन करने वाले काव्य आपके समक्ष प्रस्तुत करके इसका अपना स्वाध्याय एक चल रहा है, तो उसमें 10 जन्म संबंधी अतिशय थे, भगवान के शरीर संबंधी अतिशय थे, 10 केवल ज्ञान के अतिशय थे। ये शरीर वाले अतिशय केवल तीर्थंकर हो गए होते, अन्य किसी के शरीर में ये 10 अतिशय नहीं होते। केवल ज्ञान के अतिशय सब केवलियों में होते, और ये 14 देवकृत अतिशय भी तीर्थंकरों में होते। कुछ अतिशय अन्य केवलियों के पास भी हो सकते हैं, लेकिन पूरे 14 देवकृत अतिशय तीर्थंकरों में होते। सामने जो हमारे प्रति हैं वो पूजनीय गणनीय अलिका ज्ञानमती माता जी के यहाँ से हमें प्राप्त हुई है हस्तिनापुर से। तो संघस्था आरिका चंद्रामती माता जी की अनुकंपा से उनके अनुग्रह से ये प्रति हमारे पास पहुंची। तो इसमें ये जो 14 अतिशय अपन ने पढ़े देवों के कल पूर्ण हो गए, लेकिन वो 14 की गिनती कहाँ कैसे होती है वो थोड़ी अस्पष्ट रहेगी। तो इसमें हमने देखा कि माताजी वाली प्रति में ऐसे अंक लिखे हुए हैं, 14 की जो गणना है वो अंक से दी हुई है, तो उसको अपन यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, और जिनको लिखना हो वो लिख भी सकते हैं। देवकृत 14 अतिशयों में प्रथम अतिशय सार्वार्ध मागधीय भाषा है। मागध देवैस्तद् भाषायाः अर्धं मागध भाषया संस्कृत भाषया च प्रवर्त्यते। अर्धं भगवत भाषायाः अर्धम देशभाषात्मक च अर्धम सर्वभाषात्मक। भगवान की भाषा का जो आधा भाग है वो देशभाषात्मक होता है। यहाँ पर मागध देवों की बात आई है, संयोग से महावीर स्वामी की जो दिव्य ध्वनि थी वो जब प्रथम बार के वीर शासन जयंती को तब भगवान मगध देश में थे, तो मगध देश की जो भाषा थी वो मागधी भाषा थी। तो देव लोगों ने जो मागधी भाषा समझने वाली जनता थी उनके कानों में दिव्य ध्वनि को मागधी भाषा में रूपांतरित किया। दिव्य ध्वनि में सर्व भाषा परिवर्तन का स्वभाव होता है, दिव्य ध्वनिर्भवति विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य है। तो दिव्य ध्वनि में क्षमता होती है, पर उसके लिए कोई सहकारी अपेक्षित होता है, कोई निमित्त आवश्यक होता है। जैसे गेहूं में रोटी बनने की क्षमता है, लेकिन पीपे में पड़े पड़े रोटी नहीं बनेगी, तो उसमें कुछ निमित्तों का संयोग लगेगा तब जाकर के रोटी बनेगी। चावल में भात बनने की क्षमता है, लेकिन बोरे में जो चावल है वो कभी भात नहीं बन सकता। मिट्टी में घड़ा बनने की क्षमता है, लेकिन खेतों में अपने आप घड़े नहीं निकलते। घड़े उसकी प्रक्रिया से बनते हैं। तो इसी तरह दिव्य ध्वनि में भी क्षमता है सर्व भाषा रूप रूपांतरित होने की, लेकिन उसमें ये मागध देवलोक जो देवातिशय के अंतर्गत प्रथम अतिशय है वो अतिशय करते हैं, जिसके कारण वहां पर आधे लोगों को मागध भाषा में वो सुनाई देती है। क्योंकि जितने मनुष्य वहां पहुंच रहे हैं जहां समावसर लगा है, आधे तो स्थानीय रहेंगे, बाकी ठीक है विद्याधर आ जाएंगे और दूर के राजा आदि आ जाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन जो जनता, वहाँ की जनता जो है वो अधिकांश वहाँ रहेगी। मनुष्यों की अपेक्षा से अगर विचार करें तो स्थानीय जनता आधे से अधिक हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि आदि भाषा स्थानीय होती है, देश भाषात्मकम। महावीर स्वामी के वहां पर मागधी भाषा थी, और मागधी जो है वो ये जो नाम लिखा सार्व अर्ध मागधी ये नाम दिया, ये महावीर स्वामी की भाषा है। बाकी तीर्थंकरों की भाषा वो जहांग अपने मिलाद भगवान की भाषा कैसे रही, उनका समावसरण सौराष्ट्र में लगा था पहले गिरनार पर्वत पर। तो वहां पर जो जूनागढ़ आदि से जो लोग पहुंचे होंगे वो सौराष्ट्रीय लोग थे, वहां काठियावाड़ी भाषा चलती है। तो उस सोरठ देश की सौराष्ट्रीय भाषा आधी सौराष्ट्रीय भाषा थी उनकी नेमिनाथ भगवान की, और आधी सर्व भाषात्मक थी। तो ऐसा रहता है, वो जहां भी तीर्थंकर होते हैं वहां के उनकी आधी भाषा स्थानीय रहती है, आधी भाषा वहां समोसरण में उपस्थित सर्व जनता से संबंधित। त्रियंशों की भी भाषा रहती है, अलग अलग त्रियंशों की अलग अलग भाषा रहती है। कर्नाटक के और पश्चिम तट के जो बुलबुल हैं वो अलग आवाज निकालते हैं, और तटों से दूरवर्ती जो बुलबुल पक्षी हैं उनकी आवाज अलग होती है। तोते में भी अंतर देखा जाता है। हमने बहुत सावधानी से प्रकृति के निकट रह करके ये सारी चीजें देखी है, तो अंतर रहता है, उनमें समानता भी रहती है। ऐसा नहीं है कि वो जो प्रजाति है तो उस प्रजाति में कुछ तो समानता तो बनी रहेगी, लेकिन फिर भी गुजराती में एक कहावत है, बारह गौवे बोली बदले तरुवर बदले शाखा, बाल पढ़ाना केश बदले लखन न जाए लाखा। मतलब इसका इस पंक्ति का अर्थ है, कविता का अर्थ है कि आप 12 गांव क्रॉस करोगे तो बोलने की स्टाइल अलग मिलेगी आपको, और तरुवर बदले शाखा, और तरुवर की शाखाएं आपको आप 12 वर्ष बाद देखोगे किसी वृक्ष को तो उसमें अलग तरीके की शाखाएं आपको नजर आएंगी। और बाल पढ़ाना केश बदले, बचपन में जो आपके केश थे 12 वर्ष बाद आप देखोगे तो वो बालों में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन एक अंतिम पंक्ति में ये लिखा है कि जो लक्षण होता है इंसान का वो 12 साल बाद आप देखोगे
वो नहीं बदलेंगे,
मूल लक्षण वही रहेंगे। तो ये बात थी कि इन पक्षियों में, पशुओं में भी आवाजों में अंतर होते हैं, आकृतियों में भी अंतर होता है। ये जो दक्षिण महाराष्ट्र आदि की जो गायें हैं, यहां से लेकर के और आगे बढ़िया, तो ऐसे सिर वाली गायें मिलेंगी, फिर बाद में ऐसे सिर, ये जो आकार है उसका सिर का, ये घटता जाएगा, और कर्नाटक में जाएंगे आप तो फिर ऐसे सींग मिलेंगे, ऐसे यहाँ पर भी अपने कहीं कहीं देखने मिलती है ऐसे सींग वाली, लेकिन यहाँ वाली गायों की ये ललाट जो है वो थोड़े ऐसे राउंडेड है, और वहाँ के ललाट छोटे हैं और ऐसे सींग जाते हैं, और फिर इसी को अगर आप गुजरात में चले जाओगे तो वो सींग ऐसे जाएंगे, राजस्थान में जाओगे तो ऐसे जाएंगे, कितना फर्क है। तो वो विभिन्न प्रजातियां हो जाती है, गीर गाय अलग प्रकार की है, साहिवाल अलग प्रकार की है, हरियाणा की अलग प्रकार की है, भैंसों में भी अंतर है। सोलापुर की भैंस तो आप जानते हैं, इतने एक एक हाथ लंबे उनके सींग हैं, और कहीं पर भैंस के गोल सींग होते हैं, कहीं पर और अलग प्रकार के सींग होते हैं। तो ये प्रजातियां नामकरण अनेक प्रकार के, 197,00,000 करोड़, ये शरीर रचनाएं होती है संपूर्ण 84 लाख योनियों में, जो शरीर रचनाएं होती है वो इतने प्रकार की होती है। तो भाषाएं अलग अलग होती है, तीर्थंकर जहां भी रहते हैं वहां पर समवसरण भूमो योजन मात्र में वो भगवत भाषया व्याप्तम, समवसरण की जो भूमि है, आदिनाथ भगवान का समवसरण 12 योजन का था, लेकिन दिव्य ध्वनि जो होती है वो केवल 1 योजन तक व्याप्त करती है समवसरण भूमि को, इसलिए दिव्य ध्वनि का एक नाम है योजन घोष, एक नाम है ओंकार ध्वनि, एक नाम है दिव्य ध्वनि। तो यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि योजन मात्र समवसरण की जो भूमि है, समवसरण भूमो योजन मात्र में वो भगवत भाषा व्याप्तम, समवसरण की भूमि में 1 योजन मात्र क्षेत्र ही भगवान की भाषा से व्याप्त होता है, पर तो और उसके आगे मगध देवैस, मगध जो देव हैं उनके द्वारा तद भाषाया अर्धम, उनकी भाषा का आधा भाग लेकर, और मगध भाषाया संस्कृत भाषाया च प्रवर्तते, मगध भाषा और संस्कृत भाषा से वो सब भाषा उसमें भाषांतरित कर देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं भाषा को। मगध देव लिखा है, ठीक है। फिर दूसरा अतिशय लिखा है सर्व जनता विषया मैत्री च, संपूर्ण जनता में परस्पर मैत्री हो जाती है, मनुष्य तिर्यंश देव जो भी है वो सब एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं, समोसन में जाकर गिर भी आते हैं वो सब फ्रेंड्स होकर के बाहर आते हैं। ये भी देवातिशय है। फिर तीसरा अतिशय क्या है, सर्वर्थ फलस्तवक प्रवाल कुसुमोप शोभित तरु परिणामा, जितने भी पेड़ पौधे आदि हैं उनमें सौ ऋतुओं के फल फूल पत्र आदि सुसज्जित हो जाते हैं, और चौथा अतिशय है आदर्श तल प्रतिमा रत्नमयी जायते मही च मनोज्ञा, पूरी धरती ऐसा लगता है जैसे रत्नों की धरती हो, और उस धरती पर कोई अपना चेहरा भी देख सकता है, उसमें ऐसे देखेगा तो उसको अपना प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होगा, दर्पण के समान हो जाती है उस भूमि और रत्नमयी हो जाती है। ये भी देवातिशय है। तीसरा, ये चौथा अतिशय। पांचवा अतिशय, विहरण मन्वेत्तर, भगवान का विहार जिस दिशा में होगा वायु पीछे से बहेगी, उनके सामने से वायु विपरीत दिशा में नहीं आएगी, वायु उनकी दिशा में जाएगी। ये पंचम अतिशय। छठा अतिशय, सर्वजनस्य परमानंदस्य भवत्, सारी जनता को, सारी भक्त मंडली को परम आनंद होता है। जब तक वहां समोसन रहेंगे वो बिल्कुल आह्लादित रहेंगे, एकदम प्रसन्न रहेंगे। कोई जैसे क्या होता है कि कभी साधुओं की सभा में कोई ऐसे ऐसे बैठ करके भी कई लोग सुनते हैं, वहां पर समोसन में सब लोग हाथ जोड़ करके ही सुनते हैं जिनेंद्र भगवान की वाणी। अब पक्षियों के ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर वो कैसे पंख ऐसे करके थोड़ी सुनेंगे, तो वो सहज बैठ करके सुनेंगे। लेकिन जिन जिन प्राणियों के हाथ जोड़ सकते हैं वो ऐसे हाथ जोड़ करके बैठ, इवन सिंह भी ऐसे दोनों पंजे सामने करके भगवान की वाणी सुनते हैं और परम आनंदित रहते हैं। वो कभी ऐसे किसी के चेहरे में वो चिंताओं की लकीरें या फिर और किसी प्रकार की, कितने प्रकार की लकीरें रहती है चेहरों पर, वो उस टाइप की कोई एक्सप्रेशन आपको नहीं मिलेगा। नेचर प्रोवाइडेड यू योर फेस, यू हैव टू प्रोवाइड द एक्सप्रेशन। आपके कर्म प्रकृतियों ने आपको चेहरा दे दिया, अब चेहरे का भाव आपको देना है। चेहरे को भाव नहीं देना है, चेहरे का भाव आपको देना है। अब आप उदासी का भाव देना चाहो तो उदासी का भाव दे दो, चिंता का भाव देना चाहो, क्रोध का भाव देना चाहो, हास्य का भाव देना चाहो, जैसा देना चाहो आपके हाथ में। चौदह मांसपेशियां होती है जो मुस्कुराहट में सहायक होती है और 72 मांसपेशी पेशियां उदास मुख मुद्रा बनाने में कार्यरत होती है। तो आप सोचो कि जब मुखड़ा अपन उदास बनाते हैं तो 72 मांसपेशियों को तकलीफ दे करके आप चेहरे को उदास बनाते हो और मुस्कुराते समय 14 मांसपेशियां काम करती है, तो सब प्रसन्न रहते हैं वहां समोसरण में। परमानंद सर्वजनस, ये भी एक अतिशय हो गया, छठा अतिशय था। अब सातवां है, मरुतोपि सुरभि गंधव्या मिश्रा, जो हवाएं बहती हैं वो भी सुगंधित होती है। ये भी देवातिशय है, भगवान की अपने आप में सुगंधित काया है, लेकिन वो समोसरण में जो वायु बहती है और जब विहार होता है भगवान का तब सुगंधित वायु होती है। फिर योजनांतरम भूभागम व्युपशमित धूलि कंटक तृण कीटक शर्कर उपलम प्रकुर्वंती, फिर वो जो सुगंधित वायु है वो एक योजन तक के भूमि खंड को वह धूल से रहित कर डालती है, कांटों से रहित कर डालती है, तिनकों से रहित कर डालती है, कीड़ों से रहित कर डालती है और छोटे मोटे कंकड़ पत्थरों को भी वो हवा अलग कर देती है। अब आठवां अतिशय क्या है? आठवां अतिशय यह है कि स्तनित कुमार नाम के जो देव है जिनको अपन मेघ कुमार कहते हैं, वे सुगंधित जल वृष्टि करते हैं और वो जल वर्षा ऐसे नहीं करते कि कोई तर बतर हो जाए, पानी में भीग कर परेशान हो जाए, ऐसे इतना पानी नहीं बरसाते, वो फुहार बरसाते, मतलब ऐसी फुहार रहती है कि बालों में तो जल कण दिखेंगे लेकिन आप पूरे भीग नहीं सकते। ऐसी एक सुगंधित जल की वर्षा वो करते रहते हैं। क्यों करते हैं वो बरसात? तो बोले त्रिदश पते आज्ञा, इंद्र की आज्ञा होती है इसलिए करते हैं। इंद्र ऐसी आज्ञा क्यों देता है? भगवान की भक्ति से। इंद्र अपने आप को भगवान का सेवक मानता है और वास्तव में इस जगत में, तीनों जगत में भक्त शिरोमणि का स्थान स्वधर्म इंद्र को प्राप्त है, क्योंकि उतने अनुष्ठान कोई अन्य देव नहीं कर सकते जितने दो सागर की कालावधि में एक स्वधर्म इंद्र कर लेता, असंख्यात तीर्थंकरों के पंच कल्याण कर लेता है। दो सागर में असंख्यात तीर्थंकर उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन सभी के पांच गुणित पांच पांच कल्याण वो करता है। कुछ तीर्थंकर विदेश क्षेत्र के ऐसे होते हैं जिनके तीन कल्याण अथवा दो कल्याण भी होते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो आकर के देवलोक से मनुष्य पर्याय में आए, चरम शरीर ही हुए और उन्होंने दीक्षा के पहले तो 16 कारण भावनाएं भा ली। अब चूंकि उनको उसी जन्म से मोक्ष जाना है तो वो जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है वो इसी जन्म में फल देगी, क्योंकि मोक्ष के बाद जन्म तो होगा नहीं। तो फिर वो जब दीक्षा लेते हैं तब वो देवलोक आकर के दीक्षा कल्याण का बड़ा भारी महोत्सव करते हैं, और फिर जब केवल ज्ञान होता है तो ज्ञान कल्याणक होता है, मोक्ष कल्याणक मोक्ष होता है, मोक्ष कल्याणक होता है, तीन कल्याणक होता है। और कोई ऐसे जीव भी होते हैं कि जो देवलोक से आए अथवा कहीं से भी आए आकर के, वैसे तीर्थंकरों के लिए नियम है कि वो या तो पूर्व भव में देव होते हैं या फिर नारक होते हैं। मनुष्य तिरंश गति से आकर जिन्होंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है वो तीर्थंकर पद को प्राप्त नहीं होते, ऐसा कथन। तो ठीक है, देव से कोई मनुष्य बने, पूरा संचतुर संस्थान आदि सब कुछ पुण्य उदय से उनको प्राप्त था। अब वैराग्य हुआ, दीक्षा ली, दीक्षा लेकर केवली श्रुत केवली के चरणों में उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाली और तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया, और इसी जन्म से उनको मोक्ष जाना है। तो फिर वो तीर्थंकर प्रकृति इसी भाव में उदय में आ जाएगी, जैसे ही उनको केवल ज्ञान हुआ तीर्थंकर प्रकृति का उदीर्ण उदय हो जाएगा और तब समवसरण आदि की रचना होगी, वो तीर्थंकर हो जाएंगे। विदेह क्षेत्र में ऐसी घटना होती है, पर भरत और वैराग क्षेत्र में पांचों कल्याण वाले तीर्थंकर होते हैं। विदेह क्षेत्र में पांच कल्याण वाले भी होते हैं, तीन कल्याण वाले भी होते हैं, दो कल्याण वाले भी होते हैं, चार कल्याण वाले नहीं हो सकते, क्योंकि गर्भावस्था में 16 कारण भावनाएं नहीं भाई जा सकती। मान लो गर्भ कल्याण नहीं हुआ किसी का तो अब जन्म कल्याण नहीं हो सकता। जिनका गर्भ कल्याण नहीं हुआ उनका जन्म कल्याण भी नहीं हुआ, क्योंकि गर्भ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। प्रारंभ की अपेक्षा से कथन, जिन्होंने पिछले जन्म में तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर दिया तो वो बंध तो जारी रहता है जब तक उसका उदय, मतलब जब तक वो आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक उसका जो अध्वान कहते हैं, उसको बंध का अध्वान है, ये एक शास्त्रीय शब्द है, कर्म सिद्धांत के ग्रंथों में आता है कि कहाँ तक उसका अध्वान है। तो बोले कि चौथे गुणस्थान से लेकर आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध अध्वान है। अध्वान का अर्थ है मार्ग, तो उतने मार्ग तक के तीर्थंकर, फिर उसके ऊपर के गुणस्थानों में चले गए तो फिर बंध रुक जाता है। तेरहवें में उदय आ जाता है और उदय भी उदीर्ण उदय आता है पूरा पावर के साथ, पूरे समोसन आदि सारी रचना हो जाती है। अरहंत का सारा वैभव तीर्थंकर प्रकृति के उदय से प्राप्त होता है। तो ये कितने हुए, आठ हो गया गंधोदक वृष्टि तक। इसके बाद नौवा जो है वो ये है कि उनका जो तीर्थ विहार होता है, तीर्थंकर भगवान का तीर्थ विहार कहलाता है वो, जब वो एक स्थान में जितना उपदेश करना था कर चुके हैं और उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करते हैं, तो वो समस्त वहाँ से विलीन हो जाता है। फिर कहीं अन्यत्र जाएंगे वो, तो मार्ग में वो गगन गमन करते हुए जाएंगे और बाकी चतुर्विध संघ भूमि गमन करेगा, और गगन गमन करते हुए जहाँ जहाँ वो चार चरण रखेंगे, चरणों के नीचे देवलोक स्वर्ण कमलों की रचना करेंगे, जिसमें जो अंदर की कर्णिका होती है बीच वाला भाग वो पद्मराग मणियों का होगा, जिसको आज की भाषा में माणिक्य कहते हैं। रूबी बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, रूबी। भारत में इसको मंगल का, इसको सूर्य का रत्न माना जाता है, रूबी को, माणिक्य को। और उधर पश्चिमी देशों में रूबी को एरीज, मेष राशि का रत्न माना जाता है, मंगल का। इतना अंतर है, वहाँ क्या है कि 23 डिग्रीज का अंतर है। जैसे यहाँ पर जब समझ लो कि यहाँ सूर्य शून्य अथवा एक डिग्री का सूर्य या शून्य डिग्री का, एक दिन में एक डिग्री आगे बढ़ता है सूर्य, तो मान लो ये पहला दिन है सूर्य का एक डिग्री का, तो वहाँ पश्चिमी देश में अमेरिका वगैरह में वो 23 डिग्री का हो चुका होता है, यानी 23 डिग्री आगे रहता वहाँ। इसलिए आप देखना कि यहाँ जो सूर्य के परिवर्तन का दिन है उससे कई दिन पहले वहाँ पर सन साइंस चेंज हो जाती है। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस, ये 12 अंग्रेजी भाषा की राशि, वहाँ की सन साइंस आप देखना अलग मिलेगी आपको। और यहाँ जैसे वहाँ पर 9 अप्रैल को मेष में सूर्य रहता है, और यहाँ पर 9 अप्रैल को भारत में मीन में रहता है, 13 अप्रैल में मेष में जाएगा, तो इतना थोड़ा सा कुछ दिनों का अंतराल पड़ जाता है। तो रूबी को लेकर के बात निकली थी, कमल विहार में बीच में वो माणिक्य रत्न होते हैं कमल के मध्य में, और अतुल सुख स्पर्श हेममय दल निश्चय, और वो जो कमल की पंखुड़ियाँ होती है पीले रंग के कमल की, स्वर्ण कमल की, वो ऐसी शार्प नहीं होती है कि कोई छुए तो उंगली कट जाए, ऐसा नहीं। अतुल सुख स्पर्श, अत्यंत सुखकारी स्पर्श वाली पंखुड़ियाँ होती है, और 225 की संख्या होती है कमल रचना में। वो जो गोल रचना है जिसमें मध्य कमल की चारों दिशा, विदिशा, अंतर दिशा और उत्तर दिशाओं में 32 पंक्तियां बनती है, रेडियली बनती है, तो एक एक पंक्ति में 7-7 कमल होते हैं, तो 32 को 7 से गुणित करो 224 कमल होते हैं, और एक मध्य कमल जिस पर भगवान के चरण होते हैं वो एक और जोड़ लो तो 225 कमलों की रचना होती है, अथवा 15 पंक्तियाँ, एक एक पंक्तियों में 15 कमल होता है, 225 हो जाता है। दोनों प्रकार की रचनाएं बताई है। इसके बाद दसवां अतिशय कि सारी धरती, जितने भी खेत होते हैं, जितने भी अन्न के पौधे होते हैं, वो सब लहलहा उठते हैं और उसमें सब दाने आ जाते हैं, धान की फसल निष्पन्न हो जाती है, गेहूं की फसल निष्पन्न हो जाती है, बाजरा की फसल निष्पन्न हो जाती है, ज्वार की फसल निष्पन्न हो जाती है, जौ की फसल निष्पन्न हो जाती है, जवा की फसल निष्पन्न हो जाती है, और आपके यहाँ जो नाचनी होती है उसकी फसल, दक्षिण में रागी बोलते हैं, उसकी फसल निष्पन्न हो जाती है। सारे जितने भी अनाज हैं, कई प्रकार के धान्य होते हैं, धान्य में कुछ अन्न रूप होते हैं, कुछ निरन्न रूप होते हैं, जैसे राजगीर को भी धान्य बताया, मेथी को भी धान्य बताया, लेकिन वो अनाज रूप नहीं है, और कुछ अनाज रूप है, जैसे गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, ये नाचनी भी अनाज में आता ना? नहीं, अनाज में आता, अनाज में ही किस में आता? अच्छा, पक्का करके कल बता दे। अनाज में ही आता है। तो ये पूरी फसल लहला उठती है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा की आचार्य महाराज ने, जैनाचार्य उन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया। जब भी स्तुति का प्रसंग आता है तो वो कल्पना करके उसका चित्रण करते हैं। तो यहाँ पर क्या कल्पना की उन्होंने कि अब भगवान ऐसे विहार कर रहे हैं और देवों के अतिशय से सारी धरती फसलों से लहला रही है। तो परिऋषि तेवच भूमि त्रिभुवन नाथ से वैभवम पश्यंती एव, मतलब ये हुआ कि वो धरती ऐसी लगती है कि भगवान का विहार देख करके रोमांचित हो गए, आह्लादित हो गए। तो ये सारी फसलें जो एकदम व्यवस्थित खड़ी हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के रोंगटे खड़े हो गए भगवान को देख करके, ऐसा प्रतीत होता है। ये अलंकारिक वर्णन है, ये दसवा अतिशय हो गया। फिर ग्यारहवा अतिशय ये है, शरद उदय विमल सलिलम सर एव गगनम विराजते विगत बलम जहति च दिशस्ति मेरे काम विगत रज प्रवृज्जिमता भावं सद्यः। जैसे शरद काल के उदय आने पर सरोवरों का और नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार भगवान का विहार होने पर पूरा आकाश स्वच्छ हो जाता है, निरभ्र हो जाता है। जहाँ भगवान विहार करते हैं वहाँ आकाश बिल्कुल निर्मल रहता है, और दिशाओं में तिमेरिका विगत रज प्रवृत्ति जिम्मता भावन, मतलब ये हो गया कि दशों दिशाएं धूल रहित विगत रज, यानी रज से विगत हो जाती, कहीं भी आपको धूल उड़ती हुई नहीं दिखेगी भगवान जहां विहार करेंगे। और क्या होगा, तिमिरिकाम जहति, और जो जब सूर्यास्त या सूर्योदय का समय होता है तो दिशाओं में थोड़ा अंधेरा सा रहता है, ऊपर का आकाश तो थोड़ा क्लीन लगता है लेकिन दिशाओं में अंधेरा सा लगता है, तो वो सब भगवान के आने पर नष्ट हो जाता है। दिशाएं उस अंधकार को छोड़ देती है, धूल रहित हो जाती है और गगन स्वच्छ हो जाता है। ये ग्यारहवा अतिशय है, देवातिशय है। बारहवा अतिशय क्या है कि वहां पर कोई भी पहुंच जाए उसको कोई ना कोई देव स्वागताध्यक्ष बन करके समोसरण तक ले जाता है, अथवा भगवान के दर्शन करा देता है। अगर विहार हो रहा है, बहुत भीड़ भाड़ है और कोई नया भक्त वहां पर आना चाहता है, कहाँ है भगवान को देखना चाहता है, तो देव लोग उसका स्वागत करते हैं, आओ आओ यहाँ, तो ये तो ऐसे भगवान है कि यहाँ पर किसी को कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ सबका स्वागत है, आओ आओ, सब देवलोग का स्वागत करते हैं। ज्योतिष के देव भी होते हैं, वैंतर देव भी होते हैं, और अमृत भुजा अन्य भी, और अमृत का भोजन करने वाले अन्य भी बहुत सारे देव हो सकते हैं, वो सब कुलिश्व आज्ञा पर, इंद्र की आज्ञा से स्वागत करते हैं। कोई अब कितना भी गरीब आदमी हो, कितना भी साधारण परिस्थिति वाला हो, कितना भी दिखने में विरूप हो, सबका भरपूर स्वागत होगा। जैसे एक कथा उसमें आती है ना, श्री कृष्ण सुदामा की, तो उसके ऊपर जो काव्य लिखे गए हैं, हमें कवि चंद्रभान जैन ने कटनी में 1994 में 29 साल पहले कविता सुनाई थी। वो बहुत अच्छे कवि थे और इतनी सुंदर कविता सुनाई थी कि उसमें चार लाइनों में सुदामा का वर्णन था कि केश बिखरे हुए धूली धूसरित थे, चेहरा भी बरसों की कठोरताओं के अनुभव से कुछ ऐसी रेखाओं से युक्त था कि जिसको देख करके कहा जा सकता था कि इस मानव ने दरिद्रता की हर पीड़ा को झेला हुआ है। और अगर कभी अपने मित्र का स्मरण करके उनके मुखड़े पर मुस्कान आ भी जाती थी तो मुस्कान अधूरी आती थी। तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वो अपनी खुशी को संकट के डर से व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी ज्यादा खुश होने से फिर रोने का समय भी जल्दी आ जाता है। कहते ना कि ज्यादा हंसमत फिर रोना पड़ेगा मुझे, तो वो संकोच करके मुस्करा रहे थे। मित्र का स्मरण करके उसको प्रसन्नता तो ही नहीं थी। और उनके पैरों का जो वर्णन किया है कि पैरों में उनके पैर कटे हुए थे, फटे हुए थे, और उसमें कांटों के जाल आ गए थे। एकाध कांटे नहीं, यानी अनेक कांटे उसके पैरों में छुपे हुए थे। और अन्य भी बहुत प्रकार से उनका वर्णन किया, वस्त्र कैसे थे, और वो जो पोटली थी जो उनकी श्रीमती ने दी थी कि कभी भी अबू तुम्हारे मित्र राजा बन गए हैं, स्वामी आपके मित्र तो राजा बन गए हैं, तो राजा के पास कभी खाली नहीं जाया जाता, भगवान के पास, राजा के पास और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते, तो आप कुछ तो ले जाओ। आपको याद है उनको क्या पसंद था? तो वो बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है, तो चलो फिर वो देती हूँ बोले। तो उसकी पोटली बना करके देती है उनकी श्रीमती, और वो पोटली उनके साथ थी। और वो भी रास्ते में चलते चलते उसके ऊपर भी धूल की परत आ चुकी थी। तो ऐसा वर्णन उनका किया है उसमें काव्य में। जब वो द्वारिका के द्वार पर पहुंचते हैं तो फिर द्वारपाल रोक लेते हैं, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का बाल सखा हूं। हम लोग गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो वो द्वारपाल हंसने लगता है कि इतने बड़े सुदर्शन चक्र के अधिपति बहाने बनाकर अंदर जाना चाहता है क्या द्वारिका नगरी में? चल चल निकल यहां से, हमारे नारायण के पास फुर्सत नहीं है तेरे जैसे लोगों से मिलने की। तो ऐसे रुका रहता, फिर सोचता है कि क्या करूं, इतना लंबा सफर करके मैं यहां तक आया लेकिन फिर भी प्रवेश नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है कि कभी कोई इस प्रकार की कोई घटना होती है तो कानों कान वो बात कहीं से कहीं फैल जाती है, और अगर कोई महिला के पास वो बात चली जाए तो वेग बढ़ जाता है। तो वेग बढ़ते बढ़ते जो श्री कृष्ण जी के महल के द्वारपाल थे उनकी पत्नी से वो उन तक चला गया, और फिर वो द्वारपाल देखने गए कि भाई कौन है ये, कृष्ण का बाल सखा कह रहे हैं अपने आप को, इतने बड़े सम्राट द्वारिकाधीश। तुमने देखा उसको, पूरा वर्णन उसने अपने दिमाग में भर लिया कि भाई वो ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। तो वो श्री कृष्ण जी से जैसे मुलाकात, तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई बात है, वो एक चेहरा पढ़ लेते हैं और बोलते हैं कि कोई बात है, बोलो बोलो क्या बोलना चाहते हो। बोले कि नहीं कुछ नहीं, अरे नहीं मुझसे छुपा नहीं सकते, बोले। तो फिर उसमें भी चार पंक्तियां रविंद्र जैन जी ने जो लिखी है बड़ी अद्भुत लिखी है, तो उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया सुदामा का। और लास्ट में वो बोलते हैं कि वो अपना नाम सुदामा बता रहा है, तो जैसे श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा का नाम सुनते हैं वो शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं और पैरों में भी कुछ पहने बिना दौड़ पड़ते हैं द्वारिका के प्रमुख द्वार पर। तो सुदामा भी प्रतीक्षा करते 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 अंत में निराश हो जाता है और वापस लौटने का होता है, तो कृष्ण को भागते हुए देख करके सारी भीड़ उनके पीछे भागती है कि अरे नारायण को आज क्या हो गया, ये कहाँ जा रहे हैं। और जैसे वो द्वारपाल से पूछते हैं कि द्वारपाल सुदामा कहाँ है, द्वारपाल घबरा जाता है कि अरे मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बोलते हैं कि यहीं पर थे, अभी उस तरफ जाते हुए देखा मैंने। तो कृष्ण उस द्वारपाल को भूल जाते हैं, उसकी गलती गलती पर ध्यान ही जाता उनका, वो दौड़ लगा करके सुदामा को रोकते हैं और उसके बाद जो स्वागत करते हैं द्वारिका में उनका, बस वही स्वागत समो शरण में जैसे धनवंतों का होता है वैसे निर्धनों का भी होता है। ये देवाधीश है, देवाधीश बताने के लिए इतना विस्तार कर दिया। समंत तो व्यवानम कुर्वन्ति, सब तरफ से देवलोग उनका स्वागत करते हैं, उनको आमंत्रण देते हैं। ये 12वां अतिशय है। फिर 13वां अतिशय जो है, हजार आरों वाला सूर्य की कांति को लज्जित करने वाला, भगवान के सम्मुख चलने वाला और अनेक रत्नों की किरणों से व्याप्त धर्म चक्र होता है, ये भी देवातिशय है। और अंतिम अतिशय जो है वो है अष्टमंगल। अष्टमंगल जो द्रव्य होते हैं ना, वो देवों के 14 अतिशयों में से अंतिम अतिशय है। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सर्ष मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को।